پہلا سلاطین تیسرا باب. اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی. اور جب تک اپنے محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا. لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا. اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ دادا کے آئین پر چلتا تھا. اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا. اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی. اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی. جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو کہ اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے. اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ پر بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے. وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے. سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی. اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا. میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا. اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا. اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا. پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی. اس وقت دو عورتیں جو قصبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں. اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر پر رہتے ہوئے میرا ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई और हम एक साथ ही थीं। कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवा हम दोनों के जो घर ही में थीं। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लिटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूं कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। इसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हजूर इसी तरह कहती रही। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है ये जो जीता है मेरा बेटा है और जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर दो टुकड़े कर डालो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने जिसका वो जीता बच्चा था बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी, सो वो कहने लगी, ए मेरे मालिक, ये जीता बच्चा इसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि ये जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी मां है। और सारे इसराइल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। अहला सलातीन तीसरा बाब। और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिराउन से रिश्तेदारी की और फिराउन की बेटी ब्याह ली। और जब तक अपने महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चौगिर्द दीवार ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में लाकर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दादा के आईन पर चलता था। इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखोर जलाता था। और बादशाह जबोन को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मजबा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। जबोन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा, और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो कि उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह पर बादशाह बनाया है, और मैं छोटा लड़का ही हूं, और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शौर नहीं, और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी, और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अकलमंदी की दरख्वास्त की है, सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिंद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बरपा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिंद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आयन और अहकाम को माने जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। फिर सुलेमान जाग गया और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलेम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और अपने सब मुलाजमों की ज़ियाफत की। उस वक्त दो औरतें जो कस्बियां थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं, और एक औरत कहने लगी, ए मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर पर रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ, और मेरे जचा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई, और हम एक साथ ही थीं। कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवा हम दोनों के जो घर ही में थीं, और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लिटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूं कि वो मरा पड़ा है, पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। इसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हजूर इसी तरह कहती रही। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है ये जो जीता है मेरा बेटा है और जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर दो टुकड़े कर डालो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने, जिसका वो जीता बच्चा था, बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी, सो वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये जीता बच्चा इसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि ये जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी मां है। और सारे इसराइल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है।